24 we can go on.
18 से 24 तक इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय 18 से 24वां पद तक.
Now, please follow in your own Bibles. We won't read in Hindi.
अपने पे बाइबल में आप स्वयं पढ़िए क्योंकि हम हिंदी में नहीं पढ़ेंगे.
For ye are not come unto the mount that might be touched and that burned with fire, nor unto blackness and darkness and tempest, and the sound of trumpet, the voice of words, which voice they that heard entreated that the word should not be spoken to them any more. For they could not endure that which was commanded, and if so much as a beast touch the mountain, it shall be stoned and or thrust through with a dart. And so terrible was the sight that Moses said, I exceedingly fear and quake. Right? Have you read through in your Bible?
क्या आप अपने अपने बाइबल में इब्रानियों की पत्री 11 18 से 21 तक पढ़ा?
Now what is Paul saying here?
पौलुस ने इधर क्या बता रहा है?
What is Paul saying here? Let's have some Bible study.
और इधर
what is Paul saying here?
पौलुस इधर क्या कहता है इब्रानियों की मसीह विश्वासियों के लिए? पौलुस क्या कहता है?
You know, as we read the list of things here from in verse
18, 19, and 20 and 21,
you know, when you read, you begin to see here, it says, for ye are not come unto the mount that might be touched, burned, blackness, darkness, tempest, sound, words, voices.
वो ये कहता है,
what does that mean?
तू उस पड़ाव के पास तुम लोग अभी तक नहीं आता, नहीं आया जो जो छुआ जा सकता था, आग से प्रज्वलित था, काली गठा, अंधेरा, आंधी, तुरही का ध्वनि, बोलने वाले के ऐसे शब्द, इसका अर्थ क्या है?
What is he saying by all this year?
और ये कह रहे थे वो क्या कहता है?
You know, here Paul is giving them a picture of things which are things which can be seen, which can be touched, can be heard. Everything seems to be as something which is visible. Visible.
Paulus is atara
pad. Smoke, darkness, burning, hearing, trumpet voices. Everything is within the sense knowledge of a man.
परमेश्वर के प्रिय लोगों, जो पौलुस ने इब्रानियों के मसीह विश्वासियों को जो 18 पद से जो 21वां पद तक लिखा है, जो जो बातें उन्होंने लिखा है वो हर मनुष्य अपने ज्ञानेंद्रिय के द्वारा पहचान सकता था और समझ सकता था. ऐसा बातें दुआ को आप देख सकता है और उसका सुन सकता था, या कान से शब्द को सुन सकता था, आंखों से देख सकता था, कुछ चख सकता था और हाथों से स्पर्श कर सकता था. ऐसी दृश्य के विषय पर जो ज्ञानेंद्रिय बोलता है, पांच ज्ञानेंद्रिय है हमारे, उस ज्ञानेंद्रिय से हम समझ सकता था या हम पहचान सकता था.
But Paul says, but now to what you have come into is something beyond your sense knowledge.
Amen?
Hallelujah.
Hey, विश्वासी भाइयों,
yes.
आप अपने ज्ञानेंद्रिय उसके द्वारा पहचान से भी आगे बढ़कर,
yes.
और केवल आत्मिक अंगों के द्वारा पहचानने वाले ऐसे वस्तुओं के पास आप आगे बढ़ रहा है.
You know, the strong pull always is to get back to a place where things can be discerned and known by your sense knowledge.
परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये किंचाव शक्ति जो है,
yeah.
जो आपको पीछे की किंचाव शक्ति है, वो ऐसे स्थान पर आकर आपको खड़ा करना चाहता है,
yes.
जो आपके सारे कार्यक्रम को आंखों से देख सकता है, कानों से सुन सकता है, हाथों से स्पर्श कर और पहचान सकता है,
yes.
और चख सकता है, सुन सकता है, ऐसी स्थान पर आकर और आपको ज्ञानेंद्रिय को तृप्त कर सकता है.
Yes, Paul is telling, brothers and sisters, you have not come to such a thing in your life.
और इस विश्वासियों को पौलुस ने जोर देकर कहता है, हे प्रियव, इस बात के लिए, इस क्षेत्र तक केवल आकर पड़ाव, निरंतर पड़ाव डालने के लिए आप इधर नहीं आए.
And then he says, verse 22, may God open your eyes.
और अभी ये सब कुछ करने के बाद में 22वां पद में और पौलुस क्या कहता है, परमेश्वर हमारे आत्मिक अंगों को खोल दे.
But ye are come unto Mount Zion, unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem. You have come unto something heavenly and not unto something natural which can be known by your sense knowledge. Is that clear to you? I know that some eyes are open, some eyes are not knowing what's happening.
Praise God. परंतु हे इब्रानियों के विश्वासियों, तुम सियोन की पहाड़ के पास और जीवित परमेश्वर के नगर अर्थात स्वर्गीय यरूशलेम के पास आ पहुंचा है। ये संसारिक या पार्थिव की बात नहीं, परंतु एक स्वर्गीय नगर के पास आ पहुंचा है, कहकर जो हमारे ज्ञानेंद्रिय के द्वारा हम पहचान नहीं पाएंगे, केवल आत्मिक इंद्रियों के द्वारा ही उसको हम पहचान सकते हैं। ऐसे फाड़ पर आ पहुंचे कहता है। मैं ये निश्चय जानता हूँ, हम में से इस सच्चाई को जानने के कुछ लोगों का आंखों को तो खुल गया है, परंतु कुछ लोगों की आंख समझ की आंख नहीं खोला है।
Oh may God help us to understand।
परंतु परमेश्वर में सहायता करें कि हम इसको आत्मिक आंखों से आत्मिक ज्ञान से
समझें। Such a pull today to settle down in a realm where people and you and I we can sense, know, touch things with our sense knowledge, but God wants us to know that we have been brought into a realm which cannot be touched and known with the sense knowledge, but need to be laid hold by an inward help of the Spirit of God in our lives.
परमेश्वर के प्रिय लोग,
हालेलुया,
आज वर्तमान के समय पर मसीह से इसी स्थान पर आकर निरंतर पड़ाव डालने लगा। यहाँ उन लोग ज्ञानेंद्रिय के द्वारा समझ सकते हैं, ज्ञानेंद्रिय के द्वारा पहचान सकते हैं, जो संसारिक लोग भी उसको देख सकते हैं। ऐसे स्थान पर निरंतर पड़ाव डाला है, परंतु आज ही सुबह काल के अवसर पर हमारे हमसे प्रेम करने वाले हमारे परमेश्वर स्वर्गीय पिता ने मैं और आप ये बात को जानना चाहता है।
हालेलुया,
इस पीढ़ी में रहने वाले मेरे प्रिय लोगों, आज तू वो केवल ज्ञानेंद्रिय के द्वारा पहचानने वाला उस स्थान पर नहीं बुलाया गया, परंतु उसे आगे बढ़कर उस स्वर्गीय पहाड़ की ओर आने के लिए आपको बुलाहट है, कि जिस बात को आप अपने स्वाभाविक या प्राकृतिक ज्ञानेंद्रिय के द्वारा समझ नहीं सकेगा या पहचान नहीं पाओगे।
It is a heavenly that matters in your life.
परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये स्वर्गिक है जो आपके जीवन से संबंधित है।
The earthly will have nothing to do with that which belongs to heaven.
जो कुछ भी स्वर्गीय वस्तु है, ये संसारिक वस्तु से उसके कोई काम है।
You have come unto a heavenly Jerusalem.
आप एक स्वर्गीय यरूशलेम के पास आ पहुंचा है। 22वां पद में लिखा है, स्वर्गीय यरूशलेम के पास आ पहुंचा है।
Amen.
Amen.
Your sense knowledge can never understand that.
परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपकी प्राकृतिक ज्ञानेंद्रिय जो है, प्राकृतिक स्वाभाविक जो दिमाग है, इसको समझ नहीं पाएंगे।
Therefore, the appeal of Paul to the Hebrew Christians was, leave that mountain.
और इस कारण पौलुस प्रेरित और उस इब्रानियों के मसीह विश्वासियों से यही निवेदन करता है, जो प्राकृतिक ज्ञानेंद्रिय के द्वारा जो पहचानने वाले वस्तुओं से छोड़कर जिस बात के लिए परमेश्वर आपका स्वर्गीय बात को बुलाया, उसकी ओर आप आगे बढ़ो।
Beloved brothers and sisters,
परमेश्वर के प्रिय भाइयों बहनों,
may God really open our eyes of understanding.
परमेश्वर हमारे इस आत्मिक समझ की आंखों को खुल जाने के लिए सहायता करें।
May we not try and be like others.
और हम भी अन्य लोगों की मानिंद यूं सिर हिला कर ना रहे।
Let us not be like other churches.
और दूसरे मंडलियों वाले की मानिंद हम भी ना रहे।
That is not our call.
वो हमारे बुलाहट ऐसा नहीं प्यारे लोग।
Whichever way the others would like to go, let them go.
और जो मार्ग में अन्य मंडली वाले जाना चाहते हैं, उन लोग जान दो।
But let us realize our call.
परंतु हमारे जीवन के ऊपर असीम करुणामय परमेश्वर की स्वर्गीय बुलाहट की ओर ध्यान देते हुए उस स्वर्गीय मार्ग पर, उस स्वर्गीय यरूशलेम की ओर हम आगे बढ़ते जाएं।
To be in a place of smoke and thunder and voices. To be in a place of a lot of things which would really make the soul man happy, it is very very easy, beloved.
परमेश्वर के प्रिय लोग, हम उस स्थान पर पहुंचकर निरंतर पड़ाव डालना बड़ा सरल बात है, जहां दुआ को हम देख सकते हैं, शब्द को हम सुन सकते हैं, कुछ बातों को हमारे आंखों से देख सकते हैं, ये तो बात सरल है।
But you and I have been called to a heavenly city.
परंतु मैं और आप एक स्वर्गीय नगर की और पहुंचाने के लिए बुलाया गया।
We have been called to the church of the living God.
और हम जीवित परमेश्वर के नगर, जीवित परमेश्वर के कलीसिया के पास आप पहुंचने के लिए बुलाए गए हैं।
There is nothing like a burning, there is nothing like a thunder, there is nothing like a great voice, there is nothing that would please your sense knowledge in this place.
परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस स्वर्गीय नगर में या कोई और आंधी अंधेरा नहीं होगा, काली घटा ना होगा, ये बड़े बड़े शब्द नहीं होगा, तुरही का शब्द का ध्वनि नहीं होगा, जो जिन बातों को हम प्राकृतिक रूप से हम समझ सकेंगे, अनुभव कर सकेंगे, तृप्त भी हो सकेंगे।
So beloved, these are the days we need to realize this and we need to move or press forward in our lives.
और इस बातों को, इनकी आवश्यकताओं को परमेश्वर के प्रिय लोगों हमारे जीवन में इस आवश्यकताओं को पहचानते हुए हम प्रभु के ऊपर निहारते हुए हम आगे बढ़ते जाएं स्वर्गीय मार्ग पर.
And we need to realize that it is going to be a costly walk for all of us.
ये भी हम पहचानना अवश्य है कि ये जो हमारे इस मार्ग पर चलना है ये एक बड़ा महंगा की.
Do you know that it is costly and it is a suffering thing to come up against the religious world that is around us?
परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप इस सच्चाई को जानते हो जो हमारी चारों तरफ यीशु मसीह के नाम से जो धर्म की खारी होता है और धर्म की परंपरा की जो शिक्षाएं उपदेश होता है इससे इसको सामना करना
yeah.
बड़ा एक संग्राम है. इस बात को आप
यू हैव टू पे अ प्राइस.
और इसके लिए आप एक दाम चुकना पड़ेगा.
आई हैव टू पे अ प्राइस.
मैं भी एक दाम चुकना पड़ेगा.
टू कम अप अगेंस्ट द रिलीजियस सिस्टम दैट हैज सेटल्ड डाउन इन द रियल्म ऑफ द अर्थ.
और परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस पार्थिव की तरफ अर्थात संसारिक रूप संसारिकता में जो निरंतर पड़ाव डाला हुआ
yes.
इसे धर्मों के धर्मों को सामना करना मेरे लिए और आपके लिए कठिन है.
Do you know one thing?
आप एक बात को जानते हैं.
To come up against the religious system is far more costly than standing against the worldly system.
परमेश्वर के प्रिय लोगों,
Listen carefully.
ध्यान से सुनिए. संसारिक रीति रिवाजों को सामना करने से यीशु मसीह के नाम से यह धर्म का जो परंपरा की शिक्षा है क्रियाकांड को परमेश्वर की सच्चाई के निमित्त सामना करना अति कठिन की एक अनुभव है.
I can tell you it's easy for you to leave smoking and drinking and leave several other things, but to stand up against religious system around us is very very difficult.
परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप मसीह विश्वासी होने के अवसर पर
yeah?
दारू पीना या धूम्रपान करना या चविग्रस्त जाना या अन्य बुराई कामों को छोड़ना बड़ा सरल है, परंतु उसी अवसर पर इस यीशु मसीह के नाम से जो धर्म की परंपरा की शिक्षाएं जो अभ्यास है जो हथियारी है उसको सामना करके
yes.
परमेश्वर की सच्चाई के अनुसार जो इस स्वर्गीय की ओर आगे बढ़ना बड़ा एक कठिन संग्राम है.
Oh, the religious system can be far more ruthless than the naked world outside there.
परमेश्वर के प्रिय लोग,
Listen this below.
जो यीशु मसीह के नाम से
yeah.
जो ये धार्मिक वातावरण जो है इस निरंकुश संसारिक वातावरण से
yes.
बड़ा सख्ती है, बड़ा सख्ती से इसको निपटाना या बड़ा सामर्थ्य से निपटाना पड़ेगा. क्यों इतना सख्त है वो?
The so-called people of God can be very cruel and bitter towards you if you are pursuing this heavenly path.
परमेश्वर के प्रिय लोगों,
Listen carefully.
ध्यान से सुनिए. जो अपने आप को हम भी परमेश्वर जन कहलाता है
yes.
वे लोग जब आप इस परमेश्वर की वचन की सच्चाई के अनुसार उस स्वर्गीय मिराज की ओर आगे बढ़ने के अवसर पर वो आपके तरह बड़े कड़वाहट के साथ आपका बड़ा दुश्मनी होंगे.
I was writing down something in these days. The Lord gave me a thought.
और जब मैं कुछ बात लिख रहा था प्रभु ने मेरे को एक विचार दिया.
I began to see the Lord as a great excavator.
और मैंने हृदय के अंदर एक दृश्य देखा. प्रभु जो है किसी बात को गहराई से खोद रहा है.
And like an excavator and a restorer, he began to dig deep.
और वो प्रभु ने और एक खोदने वाले होकर और कुछ बातों को गहराई से खोद कर निकाला.
You know, often we read in many magazines or even in papers in such a certain place, as some scientists began to dig, and as they dug so many meters, they found the ruins of a city.
और
Have you read it?
अखबार में आपने देखा कुछ वैज्ञानिक लोग ने किसी देश का कुछ क्षेत्र को अंदर खुदाई के काम किया और गहराई में खुदा करने के अवसर पर प्राचीन का
Hallelujah.
किसी नगर का कुछ बातों को उन लोगों ने पाया क्या अखबार में.
And I could picture the Lord as a great excavator began to dig deep and he found the remains of a holy city, New Jerusalem.
परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैंने मेरे आंखों से एक दर्शन देखा.
Amen.
जो मेरा प्रभु यीशु मसीह ऐसा खोद कर जो संसारिक मिट्टी से दबाकर
yeah.
और मनुष्यों के पांव से रौंदा हुआ उस परमेश्वर के जीवते परमेश्वर का उस पवित्र कलीसिया
yeah.
नया यरूशलेम को वो वापस सुधारने के कार्य
yes.
करते हुए मैंने एक दृश्य देखा.
And we see that he began to dig deeper and there in the rubbles would lay the beautiful foundations of a city called New Jerusalem, the heavenly Jerusalem.
परमेश्वर के प्रिय लोगों,
हालेलुया.
जब मेरा प्रभु यीशु मसीह ने कीड़े से ठोके हुए अपने हाथों से फिर एक बार और इस जमीन पर सख्ती जमीन पर खोदते हुए आखिरी में उस स्वर्गीय और सुंदर यरूशलेम का उन्हीं ने जिस पवित्र आत्मा ने वो नेव डाला
Amen.
उस सुंदर नेव को उन्हीं ने देखा.
And he brought out a big stone.
और उन्हीं ने एक बड़ा पत्थर को
And he said, That is justification by faith.
और उन्हीं ने बोला ये विश्वास से धर्मी जन जीवित रहे।
And the instrument of God that God used was Martin Luther.
और उस पत्थर को लेकर रखा और उस सच्चाई के लिए अर्थात उस पत्थर को बाहर निकालने के लिए एक उपकरण हमारे प्रभु ने उपयोग किया जिसका नाम मार्टिन लूथर था।
And you know the moment he began to say the just shall live by faith, many things he had to face in his life. The moment he declared.
और जब मार्टिन लूथर ने इस सच्चाई
Unite my heart to fear thy name. Unite my heart to fear thy name. I will